नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इथियोपिया एक परिवार के सदस्य के रूप में साथ खड़े हैं और अधिक न्यायपूर्ण, अधिक समानतापूर्ण और अधिक शांतिपूर्ण विश्व के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक दक्षिण अपना भविष्य स्वयं लिख रहा है।
द ग्लोबल साउथ इज राइटिंग इट्स ओन डेस्टिनी एंड इंडिया एंड इथियोपिया शेयर अ विजन फॉर इट। आवर विजन इज ऑफ अ वर्ल्ड वेयर द ग्लोबल साउथ राइजेस नॉट अगेंस्ट एनीवन बट फॉर एवरीवन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली ने सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को भारत इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अदीस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। श्री मोदी ने यह पुरस्कार दोनों देशों के उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पोषित किया है।
यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो, या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की सफल यात्रा के बाद ओमान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। भारत और ओमान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने और सदियों पुराने व्यक्तिगत संबंधों पर जश्न मना रहे हैं। दोनों देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हैं और इससे निपटने के लिए एक दूसरे के साथ हैं। रणनीतिक रूप से भी दोनों देश एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ओमान के मस्कत में हमारे संवाददाता से बातचीत में भारत के राजदूत जीवी श्रीनिवास ने कहा कि दोनों देश सहिष्णु हैं और सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान करते हैं। लोकसभा में भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा के स्थायी उपयोग और उन्नति विधेयक 2025 पेश कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण का विकास करना है। ये इसके सुरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा प्रदान करने का भी प्रयास करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि पिछले एक दशक में देश ने हर क्षेत्र में जबरदस्त विकास किया है। नई दिल्ली में भारतीय आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश ने वित्तीय समावेशन, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, बेहतर पोषण के साथ साथ परिवारों के लिए वित्तीय तथा बैंकिंग पहुंच को सुनिश्चित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आम नागरिकों के लिए सरकारी निर्धारित प्रीमियम पर न्यूनतम बुनियादी बीमा सुनिश्चित किया है जो बोझ नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों के लिए भी सरकार ने सड़कों को राजमार्गों से जोड़ने, बाजार तक पहुंच बनाने में सुधार और समग्र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत ने आज बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को बुलाकर बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश के उच्चायुक्त को कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों के बारे में सूचित किया गया है जिन्होंने ढाका में भारतीय दूतावास के आसपास असुरक्षा का माहौल पैदा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का पक्षधर है और उसने लगातार शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराने का आह्वान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से आने और जाने वाले सभी तेल टैंकरों की पूर्ण और व्यापक नाकाबंदी का आदेश दिया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। भारतीय फिल्म होमबाउंड को 98 में ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया है। चीन के हाउचोव में विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन के लियांग वेई और वांग चिंग से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।